ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोग अभी बहुत ही एक अनोखे जगह पर आए हो, इसका नाम है जावट। ये जावट है जिस वट के नीचे आप बैठे। जाओ का मतलब क्या होता है? जाओ नहीं, जाओ का मतलब होता है महावर, आल्टा जो पैरों में करते हैं ना डिजाइन, महावर, महावर आल्टा या जाओ। तो यहां पर बैठकर तो फोटो देख रहे हैं उधर राधा रानी के पैर का जावक महावर मिट गया था। तो कृष्ण ने यहां बैठकर उनके श्री चरणों में महावर रचाया था। यहां पर कृष्ण भगवान सब लोग मेरे बाद में बोलना हा। राधा पाद तलाद यत्र जावकः स्खलितो भवत् यस्माद् जाववटम् नाम विख्यातम् पृथ्वीतले। इसका अर्थ यह है कि राधा के पाद तल में, एकदम नीचे होता है ना, एकदम बॉर्डर में होता है, राधा पाद तले यत्र जावकः स्खलितो भवत्। स्खलितो मतलब वो नष्ट हो गया था, उसका स्खलन हो गया था। तो यस्माद् यस्माद् इधर इस जाववट के नीचे उसको भगवान ने रचाया, इसलिए ये स्थान विख्यातम पृथ्वी तले, पृथ्वी के तल पे ये जावट नाम से विख्यात हो गया। तो कैसे भगवान ने रचाया, देखो ये बृहद गौतमीय तंत्र का मंत्र है, बृहद गौतमीय तंत्र। तो अभी भगवान ने राधा रानी के चरणों में जो जावक की रचना की है वो कैसे की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे की है? राधा रानी के दो चरणों को अपनी गोद में लेकर विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, पूरी एकाग्रता के साथ, अपने आंखों को भी न मिचते हुए, विदाउट ब्लिंकिंग द आईज, श्याम सुंदर जी ने राधा रानी के लोटस में चरण कमलों को महावर लगाया और बाद में पेंजन भी पहनाए और उन चरणों के बाद में उन्होंने पूजा की। ये स्थान है वो जहां पर आपको लाए हैं। इसी स्थान पर बैठकर कृष्ण भगवान ने राधा रानी के चरणों पर महावर रचाया था और वो पूरी एकाग्रता के साथ, नो डाइवर्शन नो डिस्ट्रैक्शन। तो कृष्ण भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भजन कैसे करना चाहिए पूरी एकाग्रता एकाग्रता के साथ। जैसे हम सब लोग उनको उनको पूछते हैं ना, राधा रानी को, कृष्ण भगवान को पूछते हैं हम, तो कृष्ण भगवान के आराध्य कौन है? अन्या राधिता नूनम, उनकी आराधिता जो है वो राधा रानी। और आराधना ये शब्द जो है ना वो भी राधा रानी के ऊपर ही बना है। राधा रानी जो करती है उसको आराधना कहते हैं। वी कैन डिफाइन द वर्ड आराधना एज पर व्हाट राधा रानी डज। तो इस ये जो कुंड आपके पीछे है वो उसका नाम है किशोरी कुंड। आप गौर से देखेंगे ना, देखो कितना बड़ा विस्तार है इसका, कहां कहां तक फैला हुआ है, ह्यूज, बहुत विस्तार पूर्वक है। ये जावट का एक बहुत विशेष स्थान है। यहाँ पर अपनी 64 सखियों के साथ राधा रानी रोज स्नान करती है। और इसकी सुंदर कथा जो है, वैसे जावट जो है ये भी एक वन है, जावट इसके बीच में जावट है, ये पूरा एक वन है। उसका वन में चार प्रकार होते हैं, प्रतिबंध अधिबन उपवन और वन। क्या बताया मैंने? प्रतिबंध अधिबन उपवन और वन। तो ये अधिवनों में से गिना गया है, 12 अधिवन है, उसमें से एक उसका नाम है। और अगला वाक्य लिखा है यहाँ पर कि ये परकीय लीला का केंद्र स्थान है। तो मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है। तो दो प्रकार की लीला होती है भगवान के विषय में, और सभी ये बड़ी उच्च स्तर की बातें हैं। एक है स्वकीय लीला और एक है परकीय लीला। स्वकीय लीला का मतलब होता है जब कृष्ण भगवान विवाह करते हैं अपनी पत्नियों से, तो स्वकीय यानी कि हमारे भाषा में ऑफिशियल, एवरीथिंग इज ऑफिशियल अबाउट इट। कोई चोरी छुपे मिलने का कोई काम नहीं है। विवाह हो गया तो क्या चोरी छुपने का जरूरत नहीं। आपने कभी सुना है क्या उसमें छुपी हुई थी कृष्ण भगवान कोयल बन के वहां गए उनको मिले? नहीं, शादी हो गई उनकी, पटरानी है भगवान की, एक महल में रहते हैं, अंतरंग कक्ष में लीला करते हैं, तो उसको कहते हैं स्वकीय लीला। तो द्वारका में जो हुआ या प्रभु राम जी का जो संबंध हुआ सीता जी से विवाह हुआ, उसको स्वकीय लीला है। परकीय लीला उसके ऊपर है आध्यात्मिक जगत में, और यहां पर जो होता है वो उसका विकृत प्रतिबिंब है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्वकीय लीला के ऊपर परकीय लीला है। और परकीय लीला का मतलब क्या है कि पति पत्नी होने की जरूरत नहीं है, प्रेम जो है वो विवाह बंधन के भी परे है। थोड़ा समझना मुश्किल है लेकिन फिर भी थोड़ा समझा सकते हैं। वो ये है कि यहाँ पर जो सबसे घिलौना चीज है, क्योंकि वो उसका विकृत प्रतिबिंब है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर किसी की पत्नी को प्रेम करना सबसे बड़ा गुनाह माना गया है, सबसे बड़ा गुनाह। चार पाप कर्म जो है ना उसके अंदर भी सबसे पापमय जो है वो परस्त्री संबंध है, परपुरुष संबंध है। तो वहां पर जो सबसे ऊंचा है उसका प्रतिबिंब जो पड़ता है वो तो सबसे नीचे चला जाता है। तो यहां पर अगर कोई ऐसा करेंगे तो वो नरक में चले जाएंगे, और नरक में उनको तप्त लोहे के कन्या के साथ में आलिंगन करना पड़ेगा, चुंबन करना पड़ेगा। शराब पियेंगे तो तप्त लोहे का रस पिलाया जाएगा आपको, ये सब दंड मिलता है वहां पर। क्योंकि वो यहाँ के लिए वो संबंध जो है वो केवल भगवान के विषय में होता है। तो गोपियां जो है वो उनकी ऑफिशियल पत्नी तो थी, बनी है बीच में, लेकिन अधिक समय तक वो उनकी किसी की और की पत्नियां थी। तो उनका प्रेम जो कृष्ण पर था, वो कृष्ण सबके इष्ट हैं, वो तो कोई पराय पुरुष नहीं है, कृष्ण सबके इष्ट हैं। और वो इष्ट के रूप में, जैसे कि वृंदा देवी यहाँ पर लौकिक रूप में तो जालंधर की पत्नी बनने आई थी, लेकिन वो भक्त थी, कृष्ण विष्णु की भक्त थी, विष्णु की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ये रोल लिया और ये लीला बरसाई है। तो एनीवे आपको समझना इतना जरूरी है कि श्री कृष्ण भगवान ने सभी गोपियों के साथ में विवाह किया था। जब ही ब्रह्मा जी ने वो बछड़े चुराए थे, ग्वाल बाल भी चुराए थे, तो कृष्ण भगवान सब बछड़े बने थे और ग्वाल बाल बने थे, यानी कि सब कृष्ण भगवान है ना, ग्वाल बाल भी कृष्ण भगवान, बछड़े भी कृष्ण भगवान। तो सभी गायों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे बालक बनकर दूध पिए, तो कृष्ण बछड़े बने, बच्चिया बने, और सब गायों को मातृत्व का अनुभव दिया। और सभी गोपियों की इच्छा थी कि वो हमारे पति बने, तो उन्होंने जब वो कृष्ण बने हुए थे सब लोग, तब नंद कृष्ण भगवान ने नंद बाबा को कहा कि अभी अच्छा मुहूर्त है, सब ग्वाल बालों की गोपियों के साथ विवाह कर देना। तो उस बीच में एक साल था ना जब वो कृष्ण बनकर सब ग्वाल बाल परी कृष्ण थे, तो उनका विवाह हुआ, और एक साल तक प्रत्यक्ष कृष्ण ने उनको पति होने का सौभाग्य दिया। लेकिन एक साल के बाद में जब वो ओरिजिनल लौट के आए और कृष्ण भगवान ने अपना रूप सब वापस ले लिया, और जो ओरिजिनल लौट के आए, तो उन्होंने उनके साथ कोई संबंध नहीं किया। ये समझने वाली बात, क्योंकि उनका हृदय कृष्ण के साथ था और उन्होंने केवल कृष्ण के प्रेम को उनका बढ़ाने के लिए उनको सहायता किया। मतलब क्या, ताने देना, रोकना, उनको बंद कर देना, उनको बुरे भला शब्द कहना। यहाँ पर एक स्थान है जटिला दूषण स्थान, अभी सब लुप्त हो गया लेकिन है वहां पर ना, राधा रानी के सासू बैठकर उनको गालियां देती रहती थी, ये तो मेरे बेटे की पत्नी है लेकिन ये कृष्ण से मिलती रहती है, तो बहुत ऐसी है वैसी है वगैरह। तो एक स्थान ही है जटिला दूषण स्थान। तो ये सब क्यों करते हैं वो, राधा कृष्ण का जो मिलन का जो रस है उसको बढ़ाने के लिए करते हैं। तो विरोध करेंगे तो हमारा जोश बढ़ता है ना मिलने के लिए, शादी के बाद भी मिलने का जोश खत्म हो जाता है, क्या 24 आवर्स मिल रहे हैं, क्या मिलना है, किसी और को मिलना चाहिए, इससे ब्रेक चाहिए बोलते हो। उसके बाद में शादी होने के पहले कितना कोशिश करते हैं, माता पिता को पता नहीं है, छुप छुप के मिलते हैं, फोन करते रहते हैं, मैसेज भेजते रहते हैं, क्या करते हैं, ये बहाना बनाते हैं, वो बहाना बनाते हैं, इतनी उत्सुकता रहती है मिलने के लिए। तो जब होता ना विरोध, तब ज्यादा उत्सुकता रहती है। एक बार दरवाजे खोल दिए तो सारी जो है ना चार्म खत्म हो जाते हैं। तो ये सब जो जटिला उनकी सासू जी है, कुटिला उनकी नंदी है, अभिमन्यु उनके पति है, ये सब विवाह कभी हुआ था? जब भगवान सब बाल बाल बने थे तो अभिमन्यु भगवान बने थे, भगवान अभिमन्यु बने थे, जटिला के पुत्र कुटिला के भाई। तो उस लीला में उनका विवाह राधा रानी का इस गांव में श्री कृष्ण से हुआ था अभिमन्यु के रूप में। फिर अभिमन्यु का रूप भगवान ने ले लिया वापस और ओरिजिनल अभिमन्यु आए, तो उन्होंने कभी भी पत्नी के रूप में संग नहीं किया उनका। केवल वो देखते थे कहीं किसी को मिलते नहीं रहे, क्या नहीं कर रहे हैं, तो पीछा करते थे उनका, स्पाय रखते थे किधर जा रही है, कब मिल रही है, खबर मिलते ही पीछा करते थे उनका। तो ये राधा रानी का ससुराल है। जो राधा रानी का ससुराल में उनका विवाह हुआ, तो इधर आगे हम जाएंगे अभी, वहां पर एक थोड़ा सा टील है, टील इलॉक, वहां पर विश्वभानु महाराज ने, राधा रानी के पिताजी ने, जटिला कुटिला को हमेशा खुश रखने के लिए पूरा महल बना दिया, बहुत बड़ा, जहां पर आज मंदिर है, और वहां पर राधा रानी, अभिमन्यु, जटिला कुटिला रहते थे। जटिला वैसे उम्र में बहुत बूढ़ी थी, कुटिला यवान थी, और बहुत दोनों मिलकर बहुत राधा रानी को पीटते थे। तो यहाँ की लीला थोड़ी चटपटी लीला है, थोड़ा सा ना कैसा है कि हम लोग जब पिक्चर में देखते हैं ना, अभी आजकल तो सीरियल चलते रहता है, पिक्चर चलते रहता है, सब में एक ही है, एक पति पत्नी है और दो तीन बाहर के हैं, और हमेशा ये चलते रहता है सीरियल ट्रैक, क्या कहते हैं उसको, ट्रायंगुलर सीरीज बोलते हैं उसको, हर एक मूवी हर एक सीरियल उस पर बना हुआ है, जो व्यभिचार कहते हैं उसको, और व्यभिचार की कथाएं लोगों को सुनने में बड़ा चाव आता है। अच्छा अच्छा, ये देखो उसका पति है ना, इसके साथ में उसका प्रेम है, देखो उसके साथ मिल रहा है, इसके साथ, ये बहुत ऐसा लोगों को उसमें बड़ा टेस्ट आता है सुनने के लिए। लेकिन ये सबसे बड़ी पाप की बात है, देखना भी, विचार करना, चर्चा करना, उसके बारे में कुछ करना, स्वयं करना, किसी के बारे में करते हुए बोलना, ये सब विषय जो है ना, वो हमको हमारी आत्मा का अधपतन करने वाले। लेकिन यही बातें आप कृष्ण के विषय में सुनेंगे, आपके हृदय की शुद्धि होगी। लेकिन फिर भी बेसिक मूलभूत हृदय शुद्ध होने के पहले सुनेंगे तो आपके मन की कामवासना बढ़ेगी बहुत जोरदार। इसलिए इन सब लीलाओं को श्रवण करने के लिए हम तुरंत योग्य नहीं होते हैं, अभी भी नहीं है। जब बेसिकली जब करते हैं कई समय तक, चार नियम पालन करते हैं, तो कहते हैं ना कि वो इन लीलाओं को थोड़ा थोड़ा समझने योग्य अपनी स्थिति बन जाती है। जैसे आपको अगर न्यूरो सर्जरी के बारे में कुछ समझना है समझो, तो आम आदमी को समझ में नहीं आएगा, MBBS करेगा तो कुछ कुछ थोड़ा समझने लगेगा उसको, क्योंकि कुछ कुछ ये क्या होता है, न्यूरो सर्जरी क्या होती है, हार्ट की सर्जरी क्या होती है, MBBS करने के बाद थोड़ा समझ में आएगा, और फिर पोस्ट आगे MD करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मतलब क्या है, उस फील्ड में जब प्रगति करेंगे तो वो समझने की योग्यता बढ़ जाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। तो 10 लोग बैठे MD तो आपसे सब बराबर ही है, लेकिन आप पूछेंगे अपने फ्रेंड डॉक्टर को MBBS को कि इसमें से सबसे ज्यादा MD कौन सा अच्छा है, तो लेकिन सब में से वो अच्छा है, क्योंकि उसको जानते हैं वो कि उनकी परख है उनको, क्योंकि नॉलेज है उनको उसके बारे में। उसी विचार से कृष्ण की चटपटी लीलाएं आम आदमी सुनेगा ना तो भ्रष्ट हो जाएगा वो, लगे घर क्या मेरे जैसा ही है सब कुछ, मैं जैसा करता हूं वैसे ही कृष्ण कर रहे हैं, इसमें क्या है, भगवान कैसे हो गए वो। तो हृदय शुद्ध किए बिना श्री कृष्ण की इन लीलाओं को सुनना, मतलब कृष्ण को भी आप ऑर्डिनरी समझेंगे। तो हमारे से गया गुजरा है, हम तो, हमारे पास एक ही है शादी के बाहर वाली, इसके पास तो बहुत सारे हैं, ऐसा आप सोचने लगेंगे तो मन में मन अपराध करने लगेंगे। इसलिए जो कथाकार होते हैं वो आम जनता में ये सब लीलाएं का चर्चा नहीं करते हैं। तो सोच रहा हूं कौन सी कथाएं बताऊं, लेकिन वो जो फोटो है ना वहां पर तो देख रहे हैं आप, एक बुढ़िया बैठी हुई है, दो तीन गैया खड़ी है उधर, और उधर कोई व्यक्ति अंदर एक कपड़े पहन रहे हैं और बाहर एक से निकल रहे हैं, दिख रहे हैं हम। वैसा है ना कि यहाँ पर ये जो जावट है ना, इसके 1 किलोमीटर आगे केशोरी कोकला बने, तो उधर कैसा है, मैं वही श्लोक बोलता हूँ आपको, बहुत सुंदर श्लोक है। जावटेर पश्चिमे ए वन मनोहर, लक्ष लक्ष कोकिले कुहरे निरंतर, तो कोकिला वन नाम का वर्णन का कोकिला वन का वर्णन दिया है पर देवर्षि किन्नरा किरण कोकिला निर्मिताय च वनाय आह्लाद पूर्णाय नमस्ते सुस्वर प्रद। इसका अर्थ यह है कि कोकिला सदृश यानी कोकिला जैसे सुमधुर स्वर से भगवान यहाँ पर आवाज निकालते हैं, ध्वनि बनाते हैं। भगवान आते हैं और कोकिला वन में कोकिल बन जाते हैं और वहां से सुमधुर ध्वनि में पुकारते हैं और सबको आनंद प्रदान करते हैं। देवर्षि किन्नर यानी देव ऋषि और किन्नर यक्ष किम पुरुष गंधर्व ऐसे सब लोग है ना, इन लोगों में बहुत संगीत के लोग बहुत माहिर होते हैं। उन सब लोगों को भी वो आनंद देते हैं, आह्लाद परम आह्लाद से पूर्ण करते हैं। तो ऐसे पूर्ण कोकिल कौन है? श्री कृष्ण भगवान। ऐसे पूर्ण कोकिल द्वारा बनाए गए इस कोकिला वन को हमारा प्रणाम है, ऐसा श्लोक है। और ये श्लोक जो है जावटेरा पश्चिम में ए वन मनोहर यानी यहाँ पर बहुत सारे कोकिल आकर कुंजन करते हैं, प्रधान कोकिल श्री कृष्ण है। यहाँ पर संकेत वन में संकेत करते हैं कि आज हम कोकिला बनकर आएंगे, तो यहाँ पर जावट के महल में ऊपर कोकिला वन में जो कोकिला आया है उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो फिर सब लोग व्याकुल हो जाते हैं कि आ गए हमारे कृष्ण। एक दिन कृष्ण वने ते आशिया, एक दिन कृष्ण भगवान इस वन में आए, कोकिला वन में कोकिल बनकर आए और उन्होंने बहुत ही सुंदर ध्वनि उच्चारण की, उसकी ध्वनि को फैलाया तो जटिला सुनकर बहुत मोहित हो गई। राधा रानी घर से बाहर आ गई सहेलों को लेकर और कह रही मैया को कि कितना सुंदर कोकिल आया है, मुझे बहुत मोहित कर रहा है, मैं इसकी आवाज सुनने जाऊं क्या? तो जटिला बहुत खुश हो जाती है और विशाखा और ललिता के साथ में उसको भेज देते, जाओ सब लोग कोकिल की आवाज सुन के आओ। तो सब लोग नाचते जाते हैं और कोकिल का संग भी करके आते हैं कृष्ण भगवान का। तो ऐसा ये कोकिला वन और जावट आसपास में है। हाँ, तो हमेशा कृष्ण भगवान राधा रानी से व्याकुल होकर वहां पर आते हैं और वहां पर पुकारते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि राधा रानी अपने ससुराल में सहेले भी साथ में है और वहां पर सुबल सखा को लेकर वो कोकिला वन में आते हैं और मुरली बजाते हैं और मुरली के भी 8 स्वर होते हैं, उसमें हर एक स्वर अलग अलग लोगों के लिए होता है, लेकिन 8वां स्वर जो है वो केवल राधा रानी के लिए है। वो जब बजाएंगे तो बजेगा वो, किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा, केवल राधा को ही सुनाई पड़ेगा, उसी के लिए पर्सनल हॉटलाइन है वो। बजाते हैं तो उनको सुनाई पड़ता है, राधा राधा नाम सुनाई पड़ता है। तो जब ये मुरली बजाई उन्होंने वहां पर 8वें स्वर में, तो राधा रानी यहां पर उनसे सुना और व्याकुल हो गई वो, तुरंत उठकर जाने लगी। तो जटिला बैठी है उधर महल के दरवाजे पर, डंडा लेकर बैठी हुई, तो कहाँ जा रही हो? तो पानी भरना है जमुना जैसे, तो अभी तो भर के आई थी 1 घंटा पहले, कहाँ पर पानी समाप्त हो गया? नहीं नहीं बैठो अंदर, भेज देती। तो व्याकुल हो जाती है, तो वहां पर कृष्ण जा एक बार दो बार तीन बार बजाते रहते हैं, तो कोई राधा रानी आती नहीं है, तो कृष्ण व्याकुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। सुबल को कहते हैं सुबल मुझे जीवित रहना मुश्किल है, अभी मैं मर जाऊंगा क्योंकि तो राजा रानी नहीं आएगी तो मेरे जीवन को क्या अर्थ है। फिर मुरली बजाते हैं, फिर भी नहीं आती, तो भी फिर जमीन पर गिर जाते हैं। वो कहते हैं अब मैं मर रहा हूँ, मैं जब मरूंगा ना तो मेरी मुरली मेरे गले की गुंजमाला जो है वो उनको भेंट में दे देना, मेरी वसीयत के रूप में दे देना उनको। तो सुबल कहता है अरे डोंट वरी मैं हूँ ना, मैं व्यवस्था करता हूँ। तो भाई ये सब म्यूजिक बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा भाई, सब लोगों को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज सेट योर फोन्स। तो सुबल कहता है डोंट वरी मैं करूंगा आपका इंतजाम करूंगा। तो सुबल फिर कुछ सोचकर, क्योंकि वो सुबल को कहते हैं कि देखो तुम ही तो हो, जब भी मुश्किल समय पर तुम ही तो काम आते हो, तुम्हारे पास नए नए नुस्खे होते हैं, तो तुमको क्यों लेकर आए यहाँ पर, बहुत भरोसा है तुम पर मुझे कि तुम कुछ करोगे नया होगा मेरे लिए। तो वो फिर वहां पर से कहा ठीक है इतना चिंतित मत होना, मैं जाकर कोशिश करता हूँ। तो वो वहां से चल के आते हैं यहाँ पर, तो वहां महल बनाए उसके सामने आते हैं, ऐसे भटके भटके से आते हैं सर, यानी कुछ खो गया है ना, सर्चिंग समथिंग। तो वो बेचारा धूप में से ऐसे आ रहा है तो चेहरा भी लाल हो गया उसका और वो पसीना थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है। तो वो बैठी हुई है उधर, अरे सुबल क्या कर रहे हो? थके थके लग रहे हो? तो कह रहे हाँ मैया मेरा बछड़ा खो गया, खो रहा ढूंढ रहा हूँ उसको, किसी ने कहा इधर चला गया, इसे मैं इधर ढूंढते ढूंढते आ गया हूँ। अच्छा बहुत थके लगते हो, थोड़ा जल वल पियो, मेरे घर पे मेरी बहू है जल पियो, उसको वही चाहिए था एंट्री चाहिए थी। तो वो घर पे प्रवेश करता है तो वहां पर ना सखियों के बीच में राजा रानी बैठकर ऐसे ही घुटनों में सर डालकर रो रही है, क्योंकि वो बैठी हुई जाने नहीं दे रही है। तो सुबल की एक विशेषता है, पता है किसी को क्या विशेषता है? राधा रानी जैसे दिखता है, मतलब होते ना ट्विन्स कैसे होते हैं, एक लड़का एक लड़की, सेम चेहरा लेकिन एक लड़का एक लड़की, वैसे लड़की राधा रानी लड़का सुबल लेकिन चेहरा सेम, ऐसा बाय द वे विल ऑफ द लॉर्ड, भगवान की इच्छा से ऐसी व्यवस्था है। और वो जानते भी है कि सुबल और उज्जवल भगवान के बहुत ऐसे हमारे बीच वाले सखा है, मतलब वो आके हमसे डिस्कस करते हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं, तो हमारे से जो क्लोज है सबसे कृष्ण के सखा भी हैं, हमसे भी क्लोज हैं, वो सुबल और उज्जवल हैं। तो सुबल को आते हुए देखकर बड़े खुश हो जाते सब लोग। तो सुबल कहता है कि अरे कृष्ण वहां पर तो ऐसा लगता है कि जान ही दे देंगे। राजा ने और व्याकुल हो जाते, बताओ सुबल क्या करना है, मैं भी रहे कब से सोच रही हूँ क्या करूं मैं। तो कहते हैं मेरे मन में एक आइडिया है कि आप मैं बन जाओ, मैं आप बन जाता हूँ, मतलब आप मेरे वस्त्र पहनना और मैं आपके वस्त्र पहनूंगा और यहाँ राजा रानी बैठकर बैठ जाऊंगा, जैसे मैं घर पे हूँ और आप मैं बनकर चले जाना, मैं ऐसे अंदर आ गया हूँ आप चले जाना बाहर मेरा रूप धारण करके। तो तुरंत वो देखो कपड़ा एक्सचेंज कर रहे, देखो वो अपना धोती उसको दे रहे हैं और उसका लहंगा उनको दे रहे हैं, हा? और वो सुबल जो है अंदर वो राजा रानी बन रहा है, उनके वस्त्र पहन रहे हैं, वो होता ना परकर घाघरा वो पहन रहा है, और सुबल राजा रानी उनका धोती और अंगरखा पहन रहे हैं। तो राजा रानी कहती है कि मेरे पास ना दो तीन समस्या है तुम्हारे ये प्लान को एग्जीक्यूट करने में, एक तो मेरे इतने घने घुंघराले बाल हैं, वो क्या करूं उसके में। तो कहती है मेरा पेटा है ना वो, उसमें बांध देना सब बाल, पूरा पूरा पेटे के अंदर बांध देना तो बाल छूट जाएंगे। कहते दूसरा जो मेरा प्रॉब्लम है ये है कि मेरा बहुत, मैं जवान लड़की हूँ तो मेरा उन्नत वक्षस्थल है, तो बिल्कुल बात नहीं, मैं बछड़े को ही ढूंढने के लिए आया ना, आप अपना बछड़ा उठा लेना कोई गौशाला से और छाती में से पकड़ लेना, तो फिर वो छप छुप जाएगा कि आप स्त्री हो और मैं पुरुष हूँ। तो और एक भी एक समस्या है, मेरी आवाज भी कन्या की है, तो कहना उसका भी उपाय ऐसा है कि आप जब छाती पर अपना बछड़ा पकड़ो कैसे ना ऐसा पूरा, तो आपके लिए भी उपाय होगा ना कि बछड़ा ढूंढने आए थे, बछड़ा मिल गया, आपके ही गौशाला में छुप गया था, तो वो पूछेगी क्यों सुबल मिल गया बछड़ा, तो आप कुछ बोलना नहीं, इतना ही बोलना, जा रहे हो, सो डोंट मेक एनी, बात करने की जरूरत नहीं है। तो तीनों समस्याओं का समाधान कर दिया। राजा रानी बहुत उत्साहित हो गई, दुखी थी बेचारी, बहुत उत्साहित हो गई, झट से उन्होंने वस्त्र बदली किया, बालों को फेटे में बांध दिया, एक बछड़ा उठाया और जाने लगे घर से बाहर, और वो वैसे ही गोल बैठ गया सखियों के बीच में राजा रानी बनकर। तो जटिला पूछ रही क्यों सुबल जल पिया तुमने, बछड़ा भी मिल गया, जा रहे हो, कुछ बोले बिना चला जाता है। फिर अभी वो राजा रानी सुबल बनी हुई है ना, वो जा रही है, फिर जाओ कोकिला वन जाती है, वो कोकिला वन जाती है तो वहां पर कृष्ण ऐसे पड़े हुए हैं निराश होकर, ठीक है सुबल आ रहा है अकेला, तो सुबल बोल जाए सुबल क्या हुआ, राजा रानी नहीं आई, क्या हुआ सुबल कुछ बोल कुछ बोल, तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, मतलब वो ऐसा दिखा रहा है, वो दिखा रही है कि मैं बहुत दुखी हूं कि मैं सफल नहीं रहा, यू अंडरस्टैंड, वो इस भाव में अभी उनको और तड़पा रही है कि मैं सुबल गया बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा और मैं लौट के आया था। तो वो कहते हैं ओके सुबल अगर तुम भी असफल हो गए तो मैं अभी तो मर ही रहा हूं, लो मेरी मुरली लो मेरी गुंजमाला दे के आओ उनको, मेरा मैं तो चला। तो फिर वो देख के राजा रानी को रहा नहीं जाता है, फिर वो तुरंत अपना पैदा उतार देती है, बसरे को छोड़ देती है, अपना रूप प्रकट करती है, फिर दोनों मिलते हैं दूसरे को और कोकिला वन में बहुत समय अच्छा बिताते हैं शान से। और फिर बहुत घंटे हो जाते ना तो नेचुरली घर का पानी खत्म हो जाता है, तो सब गोपियां उठती हैं और वो जो सुबल है राजा रानी बना हुआ वो उठते हैं और गोपियां ही बात करती है, मैया मैया पानी समाप्त हो गया तो हमको जमुना जी जाना पड़ेगा पानी के लिए, तो मैया देखती है हाँ सब बर्तन तो खाली हो गए, जाओ जाओ जल्दी जाके पानी भर के लेकर आओ। तो सुबल कुछ बात नहीं करता है, शांति से सब मटके लेकर जाते हैं। तब उस समय ना यमुना जी यहाँ भाग करती थी नंदगांव गोवर्धन के आसपास, अभी तो बहुत उसका पात्र हट गया है। तो फिर वो दोनों आते हैं यमुना किनारे, यहाँ से गोपियां आती हैं, सुबल राधा रानी बनी आती हैं और यमुना किनारे अपने मटके भर लेते हैं और वहीं ड्रेस चेंज कर लेते हैं। और फिर राधा रानी वापस अपने सखियों के साथ में घर पे आती है, सुबल अपने दोस्त के साथ में चला जाता है। हरी वो राधा रानी फिर विवाह हो गया है, फिर भी यशोदा को उनको प्रति बहुत प्रेम था। यशोदा जी उनको हमेशा ना गिफ्ट भेजा करती थी बड़े बड़े ट्रंक में भरकर। तो एक दिन उन्होंने बहुत सारे ट्रंक में भरकर वस्त्र भोजन सब तैयार किया और अपने दूत को वो भेजने वाली थी, सब बैग बक्से बना दिए उन्होंने। और वो दूत को यानी सर्वेंट को बुलाने गई कि अभी आपको ले जाना है। जब वो बाहर गई तो झट से कृष्ण आए, एक बॉक्स खुला और कुछ के अंदर बैठ गए, बंद कर दिया। और फिर वो ऑफिशियली वो सारे बक्से जो है ना वो जावट में आ गए। जावट में आते ही जटिला ने कहा वो किसके लिए है? वो यशोदा देवी ने राधा रानी के लिए भेजे हैं। तो कहने थे कि उसके कमरे में रख देना। तो उसके कमरे में सारे बॉक्स रखे जाते हैं। तो फिर दरवाजा बंद होता है और एक एक खोलते हैं तो एक से कृष्ण बाहर निकलते हैं। फिर उनका एकांत संग होता है। फिर एकांत संग हो रहा है तो बातें कर रहे हैं बंद कमरे में, तो जटिला को बाहर सुनाई पड़ता है कि कुछ बातें कर रहे थे अंदर। सुनते तो कृष्ण की आवाज आएगी, तो अभी रंगे हाथ पकड़ेंगे उनको। तो फिर वो अभिमन्यु को बुलाने जाती है, कुटिला को बुलाने जाती है, तब बाहर से खड़ी लगा देती है क्योंकि वो अंदर का जो व्यक्ति वो बाहर नहीं चला जाए। तो फिर ठाड़ करके दरवाजा खोल देती, तो अंदर का दिखती है राधा रानी देवी की पूजा कर रही, एकदम प्रेम से देवी की पूजा कर रही। देवी खड़ी है, पूजा हो रही है। अभी तो अंदर था कृष्ण, क्या हुआ? नहीं अंदर कोई नहीं, देवी की पूजा कर रही। तो कृष्ण झट से देवी बन जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। ऐसे कई बार चुप चुप के आते थे, एक बार ऐसे अंदर बैठ कर ना बातें कर रहे हैं, सुनते बाहर से आवाज और अभी वो अंदर आने वाले हैं। उतने में आप पता है ना, आप समझो आपको मक्खी को मारना है, समझो तो आप ऐसे क्या होता है मक्खी वो पता नहीं कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर उड़ जाती है, वो आप कितना भी घुमाओ अपना हाथ लेकिन वो बराबर उसमें से भाग जाते, आप नहीं मार सकते उसको। तो वैसे दरवाजा खोलने के एक आधे क्षण के पहले वो खिड़की से उठ के बाहर भाग जाते हैं, लेकिन अपनी मुरली वहां भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कृष्ण आए थे ना यहाँ पर? नहीं कृष्ण नहीं आए थे। तो ये क्या है फिर यहाँ पर? तो ना ऐसे अपने आप बोल देती है कि मैया आज क्या हुआ ना, आज ना मुरली की वर्षा हुई। हाँ आज आकाश से मुरलियां गिरी तो मेरे भी आंगन में गिरी, आप जाके अपने रूम में देखो। तो वो गए तो उनके रूम में भी मुरली थी, कुटिला के रूम में भी मुरली थी। और बाकी को पूछने गई कि भाई क्या है हमारे घर में चमत्कार है सबके घर में? तो सबके जावट के घर में मुरली थी उस समय, भगवान ने सबके घर में मुरली प्रकट कर दी। तो अभी क्या बोलेंगे? हाँ मुरली की वर्षा हुई, तुम्हारे घर में मुरली मेरे घर में मुरली, थोड़ी कृष्ण यहाँ पर आए थे। फिर ये जो किशोरी कुंड है ये उनका निजी कुंड है यहाँ का। तो आप सब जानते हैं ना, उस दिन मैंने कथा बताते पहले छोड़ दी थी ना, कह रहे आपको कंसनी गोपी की, मैंने कहा कि वहां बताऊंगा। तो भगवान की इच्छा थी, यहाँ पर आज का प्लान नहीं था, वो अपने ऐसे झट से बना, बात करते करते बन गया, कुछ अलग ही प्लान था आज। तो वो जो कथा मैंने छोड़ दी थी वो बताता हूँ अभी आपको। कथा यहाँ छूट गई थी कि हाउ बिलाऊ पत्थर बने, यहाँ से आगे हम चोरी वाले मैटर में चले गए, है ना, सस्पेंस में चले गए, क्या कहते हैं उसको, गुनेगारी चोरी डकैती पुलिस स्टेशन वगैरह वगैरह में चले गए। तो हमारी कथा डाइवर्ट हो गई। तो उसके बाद में कंस आया, क्योंकि उसके भेजे हुए सेनापति लौट के नहीं आए, खुद आया वो। और खुद ना बरसाना के क्षेत्र में प्रवेश करते ही कन्या बन गया, ऑटोमेटिक ही बिकेम लेडी। ये हमारी राधा रानी का प्रभाव है। अभी आप सोचिए, अभी गर्ग संहिता पढ़ेंगे ना तो कई चैप्टर है उसके अंदर कंस के विषय में, उनका महापराक्रम का वर्णन है कि कंस कितने बड़े पराक्रमी थे, उन्होंने किनको किनको पराभव करके अपना दूत अपना दोस्त क्या कहते हैं उसको मांडलिक बना दिया था, यानी सर्वेंट बना दिया था। टैक्स भरने वाला और कभी भी आदेश को तैयार है पालन कर, ऐसा बना दिया था सबको। सब अपना देश छोड़कर मथुरा में आके रुके थे, जब भी बुलाएंगे भाई आना पड़ेगा। तो ऐसे महान कंस जो शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट मथुरा की कन्या बन गए, तो कितनी समस्या उनको वापस जाने में। वापस जाएंगे बोले हमारे महाराज कन्या बन गए कैसे लौट के आए, तो वहां में जाने को संकोच है। जिनको सबको दूत क्या क्या कहते हैं उसको सर्वेंट बना के रखा है, उनके सामने कन्या बन के कैसे जाएंगे, इट्स वेरी एम्बेरेसिंग। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कन्या बनते ही ना, देखो अब समझो आप लोग तुरंत पहचान लेंगे ना कि ये चेंज हो गया अभी है ना, तो ये सारी गोपियां तुरंत पहचान लेती है कंस महाराज गोपी बन गए, कंस महाराज तो कन्या बन गए। सब लोग तालियां पीट बजाओ बजाओ बजाओ, सब लोग बड़े खुश होते हैं, ये आतंकवादी बड़ा मथुरा का अच्छा दंड मिला इसको। हाँ तभी वो तालियां पीट के हंस रही है। अभी समझो अभी मैं यहाँ कथा करता हूँ है ना, कथा कर रहा हूँ समझो, समझो बैठे बैठे मैं यहाँ पर लेडी बन गया समझो, तो कैसी स्थिति होगी मेरी, आई विल अंडरस्टैंड करे बाप रे गड़बड़ हो गया है। तो मुझे एक आपको भी समझ में आया कि रे कथाकार लेडी बन गए तो कितना संकोच वाली स्थिति होगी, मैं कथा पता नहीं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, वो भी अनुभव नहीं किया मैंने, आगे बताऊंगा कभी होगा कभी। तो इनका इतना संकोच हो गया कि सबको समझ में आया, इनको भी समझ में आया है और सब लोग हंस रहे हैं और वो कुछ भूल नहीं पा रहा है क्या बोलोगे, वो इज सो एम्बेरेस्ड। तो तालियां पीट पीट के हंस रहे, कहते हैं कि 6 महीने तक सभी गोपियों ने उनसे कंडे लिपवाए। कंडे लिपवाए मतलब क्या किया बताओ, पहले तो गौशाला में जाना है, गौशाला साफ करना है, सब इकट्ठा करना है, फिर इकट्ठा करके ब्रज व्रज मिक्स करके थोड़ा सा उसको थापना है, अच्छा गोल गोल बनाना है, फिर बाहर जाके धूप में पहाड़ पे पेड़ पे जहां पर भी प्लेटफॉर्म मिलेगा वहां पर उसको रखना है, फिर वो देखना है सूख जाएगा तो इसको इकट्ठा करना है, टोकरी लेके फिर सर पे डालना है उसको, इकट्ठा कर करके बार बार कितनी समाप्त होने तक बार बार जाना आना पड़ता है, फिर वो गोबर का एक घर बनाते हैं ऐसे पूरा, उसके अंदर उसको सजा के रखते हैं साल भर के लिए। बहुत सारे लोग पहाड़ में झोपड़ियां बनी रहती है सब गोबर की, उसके अंदर गोबर के कंडे होते हैं। रो रो कर 6 महीने से कंडे बनाए उसने, और सब लोग बोल रहे हैं ए मटल्ली गोपी, यानी अच्छा थोड़ा मेहनत कर ले, थोड़ा पेट कम हो जाएगा तेरा, ऐसे बोल रहे हैं उसको। वो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा है, ऐसा बोला गोपी क्या समझ रहे हैं तलवार निकालूंगा, अरे कांट से ऑल दैट नाउ बिकॉज उसका पोजीशन चेंज हो गया है। ये जीवन में ना देश काल पात्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। अभी मैं दिल्ली में था तो मेरा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर मैं एकदम असहाय था, ड्राइवर ने पीड़ा दिया मुझे, बहुत सारा तकलीफ हो गया क्योंकि मेरे लिए स्थान बदली हो गया था, समय भी रात का था ठंड का, और मैं यज्ञ करके खुले खुले वो चादर पहन के घूम रहा था तो परेशान था। देश काल पात्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बदलते ही अपना पावर आता है, बदलते ही पावर चला जाता है। अभी कंस में महाराज चक्रवर्ती सम्राट कंस, यहाँ पर कन्या, ऊपर से बरसाना का क्षेत्र, ऊपर से लड़कियां रो रही है, तालियां पीट रही है, सीधा सिचुएशन सो एम्बरेसिंग। तो वहां पर कैसे बोलेगा वो, हे अरिष्टासुर कम हियर, चलो अभी वृंदावन जाओ उसको ढूंढ के मारो, ऐसा ऑर्डर दे रहा है, यहाँ पर तो ऑर्डर फॉलो कर रहा है कंडे बनाने वाला, तो कुछ बोल नहीं पा रहे, रो रहा है उल्टा, रो रहा है रोज, अरे मटल्ली गोपी इधर आ जा, ये मटल्ली गोपी उधर रख, ऐसे बात की जा रही है, कितना उसको कष्ट हो रहेगा सोचो आप। हाँ वो एम्बेरेसिंग इट इज, इतना बड़ा आदमी उतना उसको अपमान होने से ज्यादा कष्ट होता है, छोटे आदमी को बोले ज्यादा कष्ट नहीं होता, कुछ इतना बड़ा है ही नहीं वो, जितना बड़ा होता है ना आदमी उसका अहंकार उतना बड़ा होता है, उसके बाद में उसका अपमान करेंगे तो ज्यादा दुख होता है उसको। ये तो चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे पूरे विश्व के सम्राट थे उस समय वो, मतलब राक्षसों के बीच में। तो मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी आप लोग सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं, अगर हमको गोपी बनने का अवसर मिला, समझो हम तो सब लोग ऐसे गोपी हैं एक्चुअली स्पीकिंग, आप लोग शरीर से स्त्री हो, हम शरीर से पुरुष हैं, लेकिन आत्मा के इस रूप में हम सब लोग स्त्री हैं, सब लोग कृष्ण के लिए बने हुए, कृष्ण के आनंद के लिए बने हुए, केवल अभी इस समय पुरुष के शरीर में है, लेकिन सब कृष्ण की सेविका है हम लोग। तो सब लोग क्या सोचते हैं कि हम भगवान की गोपी बन जाएं तो सेवा करेंगे उनकी, तो मेरे ऐसे उम्मीद है कि अगर आपको गोपी बनने का मौका मिलेगा तो आप बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि तो जीवन का चरम लक्ष्य है, हाईएस्ट पोजिशन है वो। तो ये कंस को तो ऑटोमेटिकली वो पोजिशन प्राप्त हो गया था, प्रवेश करते ही प्राप्त हो गया था वो। अरे वो गोपियां जो गोपियां बनी हुई है, वो क्या कर रही है, वही कर रही है, गोबर साफ कर रही है, कुंडे बना रही है, गाय का दूध निकाल रही है, दही जमा रही है, मंथन कर रही है, बड़े आनंद से गीत गाते गाते कृष्ण की याद करते करते बड़े उच्च अवस्था में वो अवस्था बिना कोई तपस्या के केवल बरसाने में प्रवेश करते ही कंस को प्राप्त हो गई थी। लेकिन वही काम गोपियां कर रही है, रोज गीत गा रहे आनंद से, और वही काम कंस कर रहा है लेकिन रो रहा है। क्यों बताइए, क्यों, व्हाई इट इज सो, किसी का उत्तर है इसका? काम वही कर रहे हैं, वो एक परम भाग्य मेरा समझ रही है और वो कृष्ण के लिए मंथन कर रही है, क्या क्या आनंद ले रही है, और वही काम ये भी कर रहे हैं लेकिन रो रो के कर रहे हैं, कभी छूटूंगा इससे, कभी छूटूंगा इससे, क्या कारण है इसका? हाँ, अहंकार, और कोई कारण नहीं, उसकी चेतना गलत है ना, इज नॉट इन राइट कॉन्शियसनेस। अगर आपको सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो जाए, आपकी चेतना अगर गलत है तो आपके लिए वो विष की तरह है, तो जो अमृत है वो उसको विष लग रहा है कि कहां फंस गया मैं, कहां फंस गया। और गोपियां नहीं बोल रही है कि हम कहां फंस गए, हम तो मथुरा में उतर कितना अच्छा था, ऐसा नहीं बोल रही। तो दोनों स्थिति एक ही है दोनों की, लेकिन एक की चेतना विपरीत है, एक की चेतना श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेष्ठ चेतना वाली गोपियां परम आनंद का अनुभव कर रही है और ये विपरीत वाला रो रहा है। इसलिए एक बात को मैं क्यों बता रहा हूं, वृंदावन में आए हो कंस की तरह मत आओ, गोपियों की तरह आओ। कंस की तरह आओगे एक तो कन्या बन जाओगे, मतलब ये ऐसा उसके लिए बहुत एम्बरेसिंग क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन जो परम भाग्य प्राप्त होगा वो भी आप बोलेंगे क्यों प्राप्त हो रहा है, ऐसा मैं कहां फंस गया। कुछ लोग ब्रजा से ऐसे बोलते रहते हैं, अरे क्या है ब्रज में, आपको मुंबई ले चलो, आपके मुंबई में सब कुछ अच्छा है, इधर क्या है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ऐसे बोलते रहते हैं। और हम लोग उनको बताते हैं, अरे मुंबई में क्या है, मुंबई में तो क्या ऐसा परेशान रहते हैं, दुखी दुख रहता है। नहीं नहीं भैया, आप तो बाबू जी ऐसे बोलते रहते हैं, हमको ले चलो, हमको वहां पर नौकरी दिला दो, हमको मुंबई जाना है। मुंबई के लोग क्या बोलते हैं, क्या है मुंबई में सब, कितना ट्रैफिक है, कितना क्या तकलीफ है, अमरीका जाना चाहिए, न्यूयॉर्क में जाना चाहिए। हाँ, और अमरीका के लोग क्या बोलते हैं, इंडिया जाना चाहिए, कितना स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है वहां पर, हाँ कितना तत्व ज्ञान है, फिलोसॉफी है। तो ये सर्कल जो ना वो चलते रहे ऐसा, यहाँ के लोग वहां देखते हैं, वहां के लोग यहाँ देखते हैं, वहां के लोग यहाँ देखते हैं, वहां के लोग, एवरीबॉडी इज लुकिंग इन द विपरीत डायरेक्शन। जहां पर है वहां संतुष्ट नहीं है और वहां जाना है, वहां पर जो लोग हैं वहां संतुष्ट नहीं है, उनको यहाँ जाना है। तो बॉम्बे वाले लोग वहां संतुष्ट नहीं है, उनको अमेरिका जाना है, अमेरिका जाके पक गए फिर मैं स्पिरिचुअल शांति के लिए हिमालय में आना है, तो कौन सा प्राणायाम करूं, कौन सा गाय का सेवा करूं, तो अल्टीमेटली घूम फिर के वही आना है ना अपने को। तो अभी क्यों घूमे, वही रहे ना हम लोग। लेकिन यदा कदाचित आपको गोपी का चरित्र प्राप्त हुआ, समझो यहाँ पर दुख मत करना कंस की तरह। कंस ना बहुत रोया और 6 महीने के बाद में पिताजी राधा रानी के उनको लेकर आए वहां पर, तो वो ना राधा रानी के चरणों में गिर गया पूरा, क्योंकि तब तक समझ गया था कि यहाँ की रानी राधा रानी सबसे पार हुई। तो गोपियां हंस रही है, वो बोल रहा है चलो मुक्त करो ना भाई, कुछ तरीका है क्या मुझे मुक्त करने का? तो गोपियों ने बता दिया था उनको कि राधा रानी यहाँ के मालकिन है, उसकी इच्छा से सब होता है, तुम्हारा जो अवस्था हुआ है ना उसी की इच्छा से हुआ है, उसी का मन हुआ तो तुमको चुरा सकती है वो। तो फिर वो अभी देखो आप, कंस महाराज है, वो दिन दहाड़े रात हर रोज कृष्ण को मारने का प्लान कर रहे हैं, वो खुद भी आएगा मारने के लिए उनको, मतलब उसके अंदर कृष्ण को डरता नहीं है, वो डरता है लेकिन फिर भी खुद मारने को आ रहा है। और राजा रानी के सामने दंडवत प्रणाम कर रहा है वो, उसका नाम सुनकर प्रभावित हो गया वो, तो कौन ज्यादा पावरफुल है? राधा रानी के लिए राक्षस नहीं भेजा मारने के लिए कभी, और कभी हिम्मत नहीं हुआ। फिर विश्वानु बाबा बोले, भाई ठीक है, हमारे एक सम्राट है ये, हमको उनको टैक्स पे करना पड़ता है, हम हर साल जाते हैं, मैं नंद महाराज सब जाते हैं उधर, और साल भर में टैक्स भर के आते हैं, हमारे महाराज है वो, तो हमें उनका सम्मान रखना जरूरी है, अभी वो इतना गेजीदार रहे हैं तो उनको अभी दे दो, माफी दे दो उनकी। तो राजा ने उंगली उठा दी है, कंस मतलब कंसनी गोपी मटर ली, इसके बाद में यहाँ आओगे ना कभी तो परमानेंट कन्या बन जाओगे, दोबारा नहीं आना यहाँ पर, अभी आप और आपका कोई आदमी दिखना नहीं चाहिए यहाँ पर, समझ में आया आपको? यस, आप जैसे कहेंगे वैसे होगा, कोई बड़ा आदमी नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेरे किशोरी कुंड है, ये मेरा निजी कुंड है, यहाँ स्नान करो, यहाँ स्नान करते ही पुरुष शरीर प्राप्त हो जाएगा, चले जाओ यहाँ से मथुरा, इस दिशा में ही हो, तो कंस है ना उसी वस्त्र में कूदा किशोरी कुंड में, तत्क्षण वो पुरुष बन गया और उसी गीले कपड़े में जो भागा पीछे मुड़कर भी देखा नहीं उसने। क्यों पता है? कहीं उनका मन बदली हो गया तो, ऑर्डर चेंज कर दिया तो वापस करना बनना पड़ेगा। बिफोर शी चेंजेस हर माइंड आई वॉन्ट टू बी बैक ऑन माई सिंहासन। वहां पर जाके फिर वापस रोक जमाया उसने, लेकिन दोबारा कभी लौट के नहीं आया। पर ना कोई आदमी आया उसका, कोई भी आदमी नहीं आया। कृष्ण को ढूंढने के लिए कहां कहां भेजा उसने, उसके बाद भी भेजा, वो बैल को भेजा और अजगर को भेजा, सबको भेजा, लेकिन मथुरा सॉरी नंदगांव बरसाना जावट में कोई नहीं आया वापस। अब ये जो स्थिति है ना, ये कहानी जो है ना, ये पहले हुई है और गोवर्धन को बाद में उठाया गया है। देखो सिक्वेंस कैसा है। तो गोवर्धन जब उठाया ना, तो दसवें दिन मतलब तृतीया से लेकर नवमी तक भगवान ने धारण किया था, सात दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, 3 से 9 तिथि जो है भगवान ने धारण किया था, नवमी तिथि में नीचे रखा उसको। दसवीं तिथि में विस्मय लीला हुई है, यानी क्या, सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग विस्मय चकित है, यानी ऑल एवरीबॉडी सरप्राइज एंड अमेज्ड। अभी वो चौरासी के मां बैठकर सब चर्चा कर रहे हैं, वो उनका एक जगह है ऑफिशियल मीटिंग प्लेस, चौरासी खंबा, वो जहां जहां नंद बाबा रहे वहां वहां हर जगह चौरासी खंबा का महल है। इधर भी आगे जाएंगे आप कामेवन, उधर भी है। तो चौरासी खंबा में उनका मीटिंग हुआ और सब लोग ना अमेज थे, एकदम विस्मय चकित थे, वो उसी भाव में चर्चा कर रहे हैं। अरे नंदा नंद नंद महाराज, ये कौन है आपका बालक, लगता कोई देवता है, ये लगता कोई शुद्ध पुरुष है, लगता है कोई विष्णु का अवतार है, ऐसा कुछ कुछ बोल रहे हैं वो। तो नंद बाबा बेचारे भोले बाबा वो सब भूल गए कि उस समय का सीक्रेट जो है वो खोल रहे हैं। सीक्रेट क्या था, जो नामकरण विधि हुआ था ना उनका, तो वसुदेव ने मैसेज भेजा था कोड लैंग्वेज में कि इनका नामकरण करने के लिए मैं गर्ग मुनि को भेज रहा हूं, लेकिन पब्लिक में नहीं करना, क्योंकि कंस को पता चला कि मेरे कुल पुरोहित तुम्हारे बालकों के लिए जा रहे हैं, मतलब समझ में आया कि यही उसके पुत्र हैं, वो हमको उल्लू बना रहे हैं, लेकिन अगर गर्ग मुनि वहां पहुंच गए, मतलब गर्ग मुनि केवल वसुदेव के ही कुल के बच्चों का नामकरण कर सकते हैं, अगर वो उनका नामकरण कर रहे हैं, मतलब ये जो भाग गए पुत्र है ना वो उनके ही पुत्र हैं, ये संशय आएगा, फिर आतंक बढ़ेगा, इसलिए मैं गर्ग मुनि को भेज रहा हूं नामकरण करने के लिए, लेकिन गुप्त रूप में करना। तो गर्ग मुनि आते ही पहला मैसेज दे देते हैं, ये नहीं बताते कि तुम्हारे ये वसुदेव के पुत्र हैं, क्योंकि वो भी सीक्रेट है, नंद बाबा को पता नहीं है। वो खाली इतना ही बोलते हैं कि तुम्हारे पुत्रों के नामकरण के लिए मैं मेरे पुरोहित को भेज रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा है गुप्त रूप में करना, ये नहीं बताया कृष्ण बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, मतलब ये भी सीक्रेट वो भी सीक्रेट, सब संभालना है ना, ताकि लीला चलती रहे। तो इसलिए नंद बाबा ने क्या किया, रोहिणी, यशोदा, नंद महाराज, कृष्ण बलराम, बस इतने लोग, और खाली बछड़े और गाय और नो मैन नो वुमन, और गुप्त रूप में गौशाला में उनका नामकरण संस्कार किया। उस समय गर्ग मुनि ने बहुत बार लंबा लीला है वो, उसमें गर्ग मुनि ने वर्णन किया था कि ये जो पुत्र है ये महाबलशाली होगा, इसने बहुत सारे अवतार लिए हैं और आगे भी लीला करेगा और ये गिरिराज को धारण करेगा। अभी देखो आप नन्हे से बालक को गोद में लिए हुए हैं और उसके बारे में सुन रहे हैं कि आगे जाकर ये जो पर्वत है ना हमारे यहाँ गांव में वो उसको उठाने वाला है, इट्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव ना, लेकिन वो भी लिखा है कुंडली में तो क्या मानने पड़ना पड़ेगा, उसका नाम गिरिधारी होगा, ऐसा सब बताया था। तो वो ना बेचारे नंद बाबा को पता है कि ये सब सीक्रेट है, किसी को बोलना नहीं है, कोई किसी को आमंत्रण तो दिया नहीं था उस समय, सबके लोगों किसी को आमंत्रण नहीं था, नोबडी न्यू। अभी बहुत दिनों के बाद में बाबा थोड़ा सा भूल गए, बोले हाँ इसमें इतना आश्चर्य करने की बात क्या है, आप तो सब इतने चकित होते जा रहे हो, वो देवता वगैरह कुछ है नहीं वो, लेकिन कुंडली में लिखा था, गर्ग मुनि ने कहा था कि वो गिरिराज को उठाएगा, तो मेरे को इतना आश्चर्य नहीं हो रहा है, अब भी आश्चर्य मत करो। तो बोले क्या क्या कहा तुमने, गर्ग मुनि आए थे, कब आए थे गर्ग मुनि, तब उनको चमका, अरे मैंने तो बोल दिया उनको, तो भांडा फूट गया। तो उन्होंने बोला अच्छा गर्ग मुनि आए थे, क्या कैसा किया उन्होंने, फिर उनको बोलना पड़ा सब कुछ बोलना पड़ा। तो वो सब लोग ना इतने गुस्सा हो गए सब लोग कि आप अपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, बिरादरी के मानते हो, ऐसा कहते हो वैसा कहते हो, किसी को आपने बुलाया नहीं, हम अभी सब लोग मिलकर तय करते हैं कि आपको हमारी बिरादरी से हम बरी कर देते हैं, वी रस्टिकेट यू फ्रॉम आवर कम्युनिटी। बहुत स्वागत वहां नाटक प्रेम का, हम समझ गए अरे कितने देर से बच्चे नहीं हुए थे, हम कितनी खुशी थी हमको, और उनके नामकरण में आपने हमको नहीं बुलाया, वो सब गुप्त रखा, और आज ऐसे ऐसे ही फ्लुक में बोल दिया आपने, हम लोग नहीं बदने वाले इसे। तो सब लोग ऐसा एकदम वातावरण बन गया पूरा, सब लोग का गर्मा गर्मी हो गई, और सब लोगों ने निकालो इनको, निकालो निकाल दो, हमको राजा नहीं चाहिए ऐसा, जो ढोंगी है वो मामला। जो एकदम आनंद में सब लोग आए थे, भगवान ने गिरिराज को उठाया, इतना आनंद हुआ, उसको चर्चा करना है तो पूरा मूड बिगड़ गया उधर। उतने में वृषभानु महाराज खड़े हो गए, उन्होंने कहा देखो भाई आप ना जरा इतना गर्मा गर्मी से काम मत लो, थोड़ा विचार करो क्या स्थिति थी उनकी। कंस का आतंक हो रहा है, गर्ग मुनि आए हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, उनका उन्होंने पालन किया है, स्थिति को देखते हुए आप लोगों को कृष्ण बलराम पर प्रेम है ना सबको, हाँ है, तो उनका सुरक्षा महत्वपूर्ण है कि नहीं है, तो फिर उसके लिए तो किया था ना उसने, इतना गर्म क्यों हो रहे हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो इसके बारे में। तो उनका दिमाग इतना गर्म था ना, वो कह रहे वृषभानु आप इनके साथ पक्ष ले रहे हो, इसको भी बरी कर दो, सो एंग्री यू नो, आप उनके साइड से बोल रहे हो मित्र होने के लिए, चलो दोनों को ही निकाल दो। तो जब दोनों को निकालने की बात हुई ना तो मामला बहुत बिगड़ गया, उसमें एक ग्रुप ऑफ ब्रजवासी खड़े हुए, अरे सब लोग शांत हो जाओ, नंद महाराज तक बात ठीक है, वृषभानु महाराज की बात ऐसा मत बोलना। बोलो क्यों, इतना क्या बड़ा है, बोले इनकी कन्या है ना महाप्रतापी है, इसके वजह से आप लोग यहाँ आराम से रह रहे हो, कोई आएगा रक्षक यहाँ पर आज तक क्यों नहीं आया, इनकी कन्या जो है ना वृषभानु नंदिनी राधा रानी वृंदावनेश्वरी उसका महाप्रताप से आज तक वो राक्षस नहीं आया। बोले कैसे 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 हुआ ऐसे, तो वो ग्रुप ने ये कहानी उनको बताई जो मैंने आपको सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ था, तब इनकी रानी की इनकी बेटी की कृपा से वो वापस चला गया था वादा करके, उसको भगा दिया था यहाँ से, इसलिए कोई आदमी हिम्मत नहीं कर रहा है, तुम इतनी उठपटांग बातें कर रहे हो, निकालो आप बात कर रहे हो, आपको पता नहीं आप क्या बात कर रहे हो। ये बात सुन के सब लोग ठंडे हो गए, हरी बोल रहो भाई आराम से रहो कोई बात नहीं। ये गर्ग संहिता में विस्मय लीला के रूप में आती है बात, इसमें सब कुछ हुआ था, और उसमें भी और एक लीला हुई। अभी देखो कैसा ना, इसको कल्प भेद कहते हैं, जब एक बार भगवान ने लीला किया था तभी इन्होंने ऐसा किया था, दूसरी दिव्य युग में आए थे तो दूसरा लीला किया था। तो उसमें क्या हुआ था, ऐसे ही बैठे थे और बात कर रहे थे, और वृषभानु महाराज कह रहे हैं कि मुझे ना मेरे बेटी का सगाई इनके साथ में बेटे के साथ करना है, तो वो प्रपोजल लेते हैं सबकी सभा के बीच में। तो सब ग्वाल वाल कहते हैं कि ये इतना शक्तिमान है, बलशाली है, इसका क्या प्रूफ है, कैसे हम माने कि हमारी राधा रानी के लिए ये लड़का योग्य है। अभी ग्वाल बाल तो है, यही तो ग्वाला तो है, लेकिन योग्य है कैसे मालूम पड़े, शक्तिशाली है, बलवान है, क्या कैसे पता चले। तो ले इसकी हम परीक्षा करते हैं। तो ये मोती कुंड की लीला है ना, उसमें ये अलग प्रकार की लीला भी आती है। तो वो वृषभानु महाराज अपने मोतियों के भंडार से 100,000 मालाएं निकाल के देते हैं और कहते हैं देखो अभी क्या चमत्कार करते हैं इससे। तो ऑफिशियली कृष्ण ने उसमें से कुछ मालाएं ली, चोरी वोरी नहीं की, ऑफिशियली ली और यहाँ पर आकर खेती की और खेत पूरे लहरा दिए मोतियों से, और सभी वो सभा के लोगों को बुलाया, सभी लोगों को बुलाया और दिखाया देखो कि मैंने केवल मेरे इच्छा से भूमि के अंदर से समुद्र वाले मोती बनाए। तो सभी वो लोग थे ना वो जो परखने वाले, सब आए मोती कुंड में और मोती कुंड में दर्शन किया, यही हमारे मोती उन्होंने बोकर इतने सारे ढेर सारे मोती बना दिए। तब वो सगाई पक्की हो गई। हरे कृष्णा, ये सब चटपटी लाई यहाँ पर होती रहती है। और क्या क्या बताएं आपको, इधर से ना एक गांव से एक पथ निकलता है, इसको कहते हैं गौचारण पथ, वो नंदगांव से निकलता है और जावट होके जाता है। तो कृष्ण भगवान यहाँ से गऊओं को निकलते हैं और बीच में से कल्टी मार देते हैं, ऐसे गोवाल बालों को बातें फंसा देते हैं, वो आगे जाओ मैं अभी आ ही रहा हूँ, ऐसा करते हैं, फिर बीच में आते हैं, वो वहां से आते हैं, मिलते हैं और तुरंत चले जाते हैं। वो गौचारण पथ है उनका। और राधा रानी फिर एक सूर्यगमन पथ है, तो सूर्यकुंड का रास्ता है यहाँ से, तो सूर्यकुंड में जाती है सूर्य की पूजा करने के लिए। आज रविवार है ना, आज राधा रानी के सूर्य पूजन का दिन है। राधा रानी आज अपने माता पिता की इच्छा से सूर्यकुंड जाती है, सूर्यकुंड राधा कुंड के पास में, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो जाती है सूर्य पूजन करने के लिए सूर्य गमन पूजा के रास्ते पर कृष्ण उनको छुप के आके मिलते हैं, फिर वो आगे चले जाते हैं, पर आगे भी पीछे पीछे जाते हैं और सूर्य कुंड में पूजा के बहाने जाके बैठ के बातें करते रहते। तो खबर मिलती है यहाँ पर सूर्य कुंड में गई है पूजा करने के लिए, कृष्ण से मिल रही है, अभी रंगे हाथ पकड़ेंगे सब लोग यहाँ से, जगीला कुटला डंडा लेकर अभिमन्यु जाते हैं, भाग के हाथ पकड़ेंगे उनको। तो वो बात कर रहे हैं बैठ के, तो भाग के आते ना तो भगवान कृष्ण सूर्य बन जाते हैं और सूर्य की पूजा आरंभ करती है। तो अभी तो थे, मैं देख के गया था इधर, सोचा रंगे हाथ पकड़ लो, तुमको लेके आया तो वो सूर्य भी था बैठ रहे, तो कह रहे किधर कृष्ण है, मैं तो सूर्य की पूजा कर रही हूँ। तो यहां से होता है, ऐसे बहुत चटपटी लीलाएं हैं हर बार। एक बार क्या हुआ, ऐसा बातें बातें में निकला कि सबसे पतिव्रता नारी कौन है, ऐसे गोपियों में चर्चा हो गई। तो फिर कहते कि चलो हम लोग परीक्षा करेंगे, अभी यमुना के जल के यमुना जी के पास छलनी लेकर जाएंगे और छलनी में जब पानी उठाएंगे तो जो पतिव्रता नारी होगी उसका छलनी के होल से पानी नहीं गिरेगा। देखो क्या टेस्ट है, वेरी डिफिकल्ट टेस्ट। जो पतिव्रता नारी है उसी पतिव्रता पातिव्रत के बल से पानी छलनी में ही रहेगा और सहस्त्र धारा है उसके अंदर, सहस्त्र छेद है उसके अंदर, उसमें से जल नहीं गिरेगा। तो जटिला और कुटिला को बड़ा अभिमान था कि हमसे बड़ी पतिव्रता कौन हो सकती है, हम ही जीतेंगे इसको। जो लोग बड़ी बड़ी गोपी आती हैं जाती हैं, सबका पानी गिर जाता है। जटिला कुटिला को तो और आत्मविश्वास है कि हम तो कोई सवाल ही नहीं, हमारे ऊपर पतिव्रता कौन है वृंदावन में। जटिल जाती है तो विधवा विधवा है ऐसे वो, लेकिन पतिव्रत का उसको अपना घमंड है, जाती है ना सौ के सामने पूरा पानी बह जाता है। हाउ एम्बैरेसिंग, इतने बड़े बड़े ताने देती है कि हमारी जो बहू है वो ऐसा है वैसा है, और खुद का ही सोलो थे, अरे जटिला अरे तू भी। फिर कुटिला आती है कुटिला, और कुटिला का भी सारी बारा पानी बह जाता है। अभी केवल एक ही कन्या बची है स्त्री विवाहित, वो राधा रानी। तो बोला ये क्या, तो हम दिन रात उनको उसके पीछे भागते रहते हैं, तो इसको मिलते रहते, उसको मिलते, कैसे पति बताइए। तुम जब जाती है ना तो एक बूंद भी पानी नहीं गिरता है, इस समय उसके चरणों में सब गिर जाते हैं। हमको लगता है कि ऐसी उल्टा है, वैसे वैसे विवाह भाई संबंध है उसका, लेकिन सबसे बड़ी पतिव्रता नारी राधा रानी है, महासती। ऐसे यहाँ पर लीला हुई है। यहाँ पर एक बेरी, अभी क्या है ना बहुत सारे स्थान लुप्त हो चुके हैं, एक भाई बेर का पेड़ था यहाँ पर, तो वहां पर कृष्ण आके ना एक बार रात भर कोकिल का आवाज निकाल कर पुकारते रहे पुकारते रहे पुकारते रहे, और रात भर जटिला कुटिला ने उनको बाहर ही जाने नहीं दिया, बेचारे रात भर पुकारते रहे, रोते रहे, तो सुबह उठकर चले गए कृष्ण, वो बेरिया का पेड़ है। और अच्छा और एक लीला बताता हूँ, तो ना अभी ये जो इनका छुप छुप के मिलना वगैरह सब परेशान हो गए, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग ना घर शिफ्ट करेंगे, मथुरा चले जाएंगे। हाँ ऐसा सोचते ना हम लोग, अभी स्थान बदले करेंगे तो रोक खत्म हो जाएगा, तो प्लान करते हैं ठीक है। तो अभी फिर भी वो शुक्रवार को देवी का पूजन का तो विधि चलना है ना, जहां पर भी रहेंगे तो करना ही है, सोमवार सूर्य का रविवार को करना है, शुक्रवार को देवी का पूजन करना है, वो चल रहा है। तो बीच में ना वो देवी का पूजन करने जाते हैं, उस जाने के पहले शिफ्ट होना है अभी, लेकिन शुक्रवार के दिन जाती है वो देवी के मंदिर में, और वहां पर देवी के मंदिर में कृष्ण आते मिलने के लिए, और खबर मिलती है बराबर की वहां पर देवी के पूजन करने के लिए गए लेकिन कृष्ण से मिल रहे हैं। तो सब लोग गैंग जाते हैं वहां पर, अभी अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, अभी हद के बाद हो गया। तो वहां जाते हैं तो पूरा आवाज आ रही है बात करने की, अचानक ये पहुंचते ही देवी श्री कृष्ण देवी बन जाते, एकदम गंभीर एकदम, देखते थे देवी की पूजा चल रही है। उतने में देवी बोलने लगती है, मैं देवी बोलने रही है, आवाज आ रही पीछे से, क्या तुम तुम्हारे में से कोई अभिमन्यु है। हाँ महाराज मैं हूँ, मतलब अभिमन्यु पहुंच गए ना। क्या तुम्हारे में कोई जटिला है। हाँ मैं महाराज मैं जटिला। कुटिला भी है क्या। हाँ कुटिला भी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि तुम पर मैं बहुत नाराज हूं, उसे देवी बोल रही है, क्योंकि तुम लोग राधा रानी को यहां से मथुरा जाने का योजना बना रहे हो और मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ कि कंस को ये खबर मिल चुकी है और कंस भी बहुत नाराज है और उसके सैनिक अभिमन्यु का संरक्षण करने के लिए अभी आ रहे हैं। अभी देवी बोल रही तो टेक इट सीरियसली बाबा, नॉट टेक इट सीरियसली। तो वो बहुत दुखी हो जाते, अरे क्यों ऐसा हुआ। पहले वादा करो कि तुम्हारा मथुरा शिफ्ट होने का प्लान कैंसिल है। हाँ महाराज, नहीं नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम यही रहेंगे। हाँ अगर आप ऐसा करते हो तो मैं कंस को प्रेरणा दे सकती हूँ कि इसका वध मत करो, प्लान कैंसिल हो जाता है। हरे कृष्णा। तो ऐसे ये बहुत चटपटा स्थान है और बहुत सारी कहानियां इसमें। चंद्रावली नाम की राधा रानी की एक सहेली है, जो सहेली नहीं है, उनके राइवल है, प्रतिस्पर्धी है ना, लेकिन ये सब प्रेम का लीला है सब। तो चंद्रावली की जो सखी है पद्मावती, उसका विवाह इस गांव में हुआ था। तो पद्मावती विवाह स्थली भी जावट है। और एक विशेष बात राधा रानी ने यहाँ पर की है, आपको पता है कितने प्रकार की गंगा है? एनीवन नोज गंगा जी कितने नाम से जानी जाती है, कितने प्रकार की है? जो स्वर्ग में घूमती है गंगा जी वो आकाश गंगा है, जो पृथ्वी पर आती है वो गंगा है, और क्या नाम है उसका, भागीरथी गंगा है। और नीचे पहुंचती है ना तो दो नाम है उसके, पाताल गंगा या भोगवती गंगा। गंगा वही है वो, तो जब वहां चल रही है तो उसका नाम आकाश गंगा है। उसका जल कृष्ण के अभिषेक के लिए गोवर्धन लीला के बाद में लाया गया था इंद्र के द्वारा और ऐरावत के द्वारा। फिर पृथ्वी पर घूमती है, फिर यहां से जाती है पाताल लोक, और जमुना जी यहां से ही वापस चली जाती है और गंगा जी नीचे आती है। तो राधा रानी ने यहां पर इस गांव में भोगवती गंगा को प्रकट किया था और अपने हाथ से एक पारिजात का पेड़ यहां पर लगाया था, जो कहां है अभी पता नहीं है, लेकिन वैशाख में उसको सुंदर फूल आते थे राधा रानी के हाथ से लगाए हुए। उसको पारल गंगा कहते हैं, वो है कहीं यहां पर, पारल गंगा नाम का पौंड है यहां पर, जहां पर राधा रानी ने अपने चमत्कार से भगवती गंगा को प्रकट किया था। जय जय श्री राधे।